ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
மே பரமாத்ம ஸ்வரூப ஹீ ஹூ, மே சச்சித் ஆனந்த் ஸ்வரூப ஹூ, அப்னி நிஷ்டா அப்னே ஆப் கே லியே பூரி கர் லேனி. யதி ஆப் யே கேதே ஹே கி மே பகவத் ஸ்வரூப ஹூ, பகவான் கா ஸ்வரூப ஹூ, பரமாத்மா கா ஸ்வரூப ஹூ, பகவான் கா ஹூ, யதி யஹி பாத் பி ஆப்கி நிஷ்டா ஹோ கயி தோ ஆப்கி பக்தி கி நிஷ்டா பக்கி ஹோ ஜாயேகி. யே நிஷ்டா தோ கம் சே கம் அப்னே அந்தர் பக்கி கர் ஹி லேனி சாஹியே. யதி அப் பக்கா நஹி கர் சகே தோ இஸ் பாத் மே க்யா பரோசா कि दोबारा हमको मनुष्य शरीर मिलेगा तब हमारी ये बात पक्की होगी. जो काम अब न कर सके, इस जन्म में न कर सके, इस वक्त न कर सके, उसके लिए हम आगे के लिए क्या आशा कर सकते हैं, या किसी से क्या आशा रख सकते हैं कि कोई हमारे लिए यह निष्ठा पूरी कर देगा. इसलिए नारायण अपनी निष्ठा ही अपने काम आने वाली है. इसमें ये निष्ठा तो एक ऐसी निष्ठा है कि जिसमें हमारा कोई साझेदारी, हिस्सेदारी कोई और कर देगा ऐसा नहीं है. क्योंकि मान लो संसार में किसी आदमी को व्यापार करते समय कोई कर्जा हो जाए तो आशा कर सकता है कि शायद मेरा बेटा होकर के मुझे इस कर्ज से, ऋण से मुक्त कर देगा, इस दुख से मेरा छुटकारा कर देगा. परंतु पेट में बहुत जोर की भूख लगी हो तो किससे आशा कर सकते हो कि कौन खा करके मेरी भूख मिटा देगा. बड़ी जोर की प्यास लगी हो किससे आशा कर सकते हो कि ये पानी पीकर मेरी प्यास शायद बुझा दे. उसके लिए तो हमें अपने आप ही पानी पीना होगा, अपने आप ही भोजन करना होगा, तभी ये भूख और प्यास का दुख मिट सकता है ना. उसी तरह से अपने को समझे बिना अपना दुख कौन निवारण कर सकता है, कौन दूर कर सकता है? कोई संत भी नहीं कर सकते, कोई गुरु भी नहीं कर सकते, कोई भगवान भी नहीं कर सकते. याद रखना, आप ये सोचें कि कोई संत, गुरु, भगवान मेरा दुख दूर कर देंगे, वो दुख दूर नहीं करेंगे. वो दुख दूर करने का उपाय आपको जरूर समझा देंगे, परंतु समझना तो आपको अपने आप ही होगा. जब तक आप अपने में समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, तो कोई दूसरा आपको समझाने की हिम्मत भी नहीं रख सकता, समझा भी नहीं सकता. समझ ही, जो समझना ही न चाहता हो तो उसे भला कौन समझा सकता है? गुरु मिले ही विरंच समय मूर्ख धरे उन चेत. उसे तो साक्षात ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो भी उसका वो नहीं समझ, न ब्रह्मा जी समझा सकते हैं न वो समझ सकता है. समझने की जिज्ञासा बोले अपने अंदर होनी चाहिए. तो इसमें कोई शक नहीं कि आप जिज्ञासु हैं, तभी आप आए हैं. आपकी जिज्ञासा के साथ तो कोई शंका नहीं है, परंतु उस जिज्ञासा को, अपनी इस जिज्ञासा को हमें सही रूप से समझने के लिए थोड़ा सा अपने और पुरुषार्थ की आवश्यकता है. पुरुषार्थ किस बात का? बोले पुरुषार्थ और इस बात का करना है कि हमें अपनी वृत्तियों को, जो वृत्तियां निरंतर हमें बाहर की ओर खींचती हैं, बाहरी जगत की ओर दौड़ाती हैं, इस बाहर के लिए, बाहर की उन्नति के लिए, बाहरी विकास के लिए, मेरा कारोबार का विकास हो, मेरा संसार में अमुक अमुक कार्य का विकास हो, उसके लिए आप बड़े बड़े याग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत सारे सत्कर्म अनुष्ठान करते हैं, जिससे कि आपको ये बाहरी विकास आपको हो. तो मैं कहती हूं कुछ उसके लिए अंतर याग भी करें, अंदर के लिए भी यज्ञ करें. कि मेरा अंदर की का विकास हो। बोले उसके लिए अंत विकास करने के लिए आप क्या करें। मैं हमेशा आपको कहती हूं कि आप उसके लिए अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को लेकर, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आप जब तक अपने अंदर अंथा पुकार नहीं करेंगे, भीतर से आपके अंदर से ये पुकार नहीं उठेगी कि मुझे उस तत्व को, जिज्ञासा को, उस तत्व को जानना है, उसे जानने के लिए भीतर से आपके अंदर पुकार उठनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। और उस आवाज को लेकर जो अंथा की पुकार होती, भीतरी पुकार होती है, उसमें बड़ी भारी प्रार्थना होती है। और वो प्रार्थना, वो पुकार ही आपके लिए अंत याग है, अंदर का यज्ञ है। और उसके साथ आप जब सत्संग करेंगे और सत्संग में बैठकर सदग्रंथ का विचार कर, इस मंत्र का विचार करेंगे, यस्मिन सर्वभूताणि आत्मनेवानुभूतादि जानता, जो सब भूतों में उस आत्मा को जानता है, वह व्यक्ति शोक और मोह से, मोह और शोक से रहित हो जाता है। ऐसा जानने वाला विद्वान बोले उस इसका एकमात्र उपाय है शोक और मोह से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, यही हमारे लिए दुख के कारण है। और इनसे मुक्ति पाने का उपाय हमें अपने को जानना है, अपने को समझना है। अपने को समझना ये है कि जो हमारे अंदर विकार आ गए, मैंने प्रथम में बात शुरू की थी कि जड़ों के ऊपर मिट्टी आई हुई है, उसी तरह से हमारे अंदर वासना विकार भरे हुए हैं, अविद्या का। ये सब वासनाएं किसके कारण है? बोले अज्ञान के कारण है। तो इन वासनाओं की परतों को हटाने के लिए हम भगवान से पुकार करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी विकार वासनाएं दूर हो मेरे अंदर से। उसके लिए प्रार्थना करते हुए निरंतर अपनी वृत्ति को भगवान के चरणों में लगाते हुए, उस परमात्मा आत्मचिंतन में, सदगुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में लगाते हुए भगवान का स्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे और निरंतर बैठ करके एक ही बात को विचार करेंगे। क्या उपासना करेंगे? बोले निरंतर बैठ करके उपासना करें। उपासना यही करें अपने को शरीर से ऊपर समझने का, इसी का नाम उपासना है। अपने को शरीर से ऊपर समझो, मैं शरीर हूं ये न समझ करके अब यही अभ्यास करें कि मैं शरीर से ऊपर हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर का साक्षी हूं, मैं शरीर का दृष्टा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इस बात का अभ्यास करें, इस बात को दूर आए। क्या ये कहने से आप ज्ञानी हो जाएंगे? ज्ञानी नहीं होंगे, ज्ञानी होने का एक साधन होगा। यस, मैं शरीर नहीं हूं ऐसा समझना भी एक साधना है, अभ्यास है। और इस अभ्यास के करते करते करते, दूराते दूराते, आप जब इस बात को हृदय की गहराई से दूर करके, फर्क करके देखना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करते करते अभ्यास, क्योंकि एक जन्म का अभ्यास नहीं है, कई जन्म से ये संसार का अभ्यास है कि मैं एक सांसारिक जीव हूं, मैं तो जन्म मरने वाला हूं, ये मेरा शरीर है, ये भी तो हमारा एक अभ्यास ही है। इसको पकड़ाओ, इसको छुड़ाने के लिए जब तक आप अपने भीतर आत्मनिष्ठा की भावना पूरी नहीं करेंगे, तो ये बात बन नहीं सकती है नारायण। इसलिए श्रुति कहती है कि हमें अभ्यास करना चाहिए और अभ्यास के साथ समझना चाहिए कि मैं सर्वभूत रूप आत्मा हूं। यह जो पंचभूत हैं, इस सब में मेरी व्याप्ति है। वायु में भी मैं, पृथ्वी में भी मैं, जल में भी मैं, वायु में भी मैं, अग्नि में भी मैं, आकाश में भी मैं। ये पंचभूत रूप जो चारों तरफ ये दिख रहे हैं, मैं ही तो व्याप्त है, क्योंकि मेरे बिना कुछ समझ में नहीं आता, मेरे बिना कुछ दिखाई नहीं, मैं न हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, मैं न हो तो कुछ सुनाई नहीं देता, मैं न हो तो चला नहीं जाता, मैं न हो तो कुछ क्रिया ही नहीं होती। सारी क्रिया किसके कारण हो रही है? इस शरीर से निकलता तो क्या निकलता है? आंख भी वही है, कान भी वही है, मुंह भी वही है, हाथ पांव भी वही है, कुछ इस शरीर से अलग नहीं हुआ, पर क्या नहीं है? एक इसके अंदर जो मैं शक्ति है वो तो उसका ही तो अभाव दिखाई पड़ता है, तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। और एक उसके होने पर ये सब सजीव हो जाता है, ये सर्वभूत रूप में जो सजीवता है, सुंदरता है, सजगता है, ये सारी सुंदरता किसके कारण है? ये सुंदर सुंदर फूल खिले हुए दिख रहे हैं, ये किससे दिख रहे हैं? मैं से दिख रहे हैं। यदि मैं न हो तो ये फूलों की सुंदरता न दिखे, ये वायु की स्पर्शता न अनुभव हो, ये आकाश का फैलाव हमें आभास न हो, ये पृथ्वी की गंध हमें प्राप्त न हो, ये अग्नि की उष्णता मैं न हो तो ये न व्याप्त हो। ये सब किससे व्याप्त हो रही है? मैं से। इसलिए ये सर्वभूत रूप में जहां तक जिसको हमारी दृष्टि पार नहीं कर सकती, वो अभेद्य अछेद्य अखंड जो है, ऐसा व्यापक कोई और दूसरा नहीं है, यह मेरा आत्मस्वरूप है, ये मैं से ही है। ऐसी अपने भीतर निष्ठा पक्की होनी चाहिए। जब इस प्रकार सर्वत्र अपना आप दिखाई देगा, मोह तो कहां होता है? जहां मेरापन होता है। शोक कहां होता है? जहां मेरापन कुछ बिगड़ने लगता है। तो ये मेरेपन की, जैसे मैं कई बार कहती हूं, सर्वत्र फैला हुआ आकाश, और उस आकाश में हमने ईंट पत्थरों को लेकर एक दीवार खड़ी कर ली, और उस दीवार के अंदर जो आकाश आ गया, उस घटाकाश को, उस मठाकाश को हम कहने लगे ये मठ मेरा है, ये घर मेरा है। उस खुले आकाश में हमने एक दीवार खींच करके ये कह दिया कि बस अब ये मठ मेरा है। हमारे दीवार खींचने से उस मठ के अंदर का जो आकाश है और उस मठ से बाहर का जो फैला हुआ आकाश है, उसमें तो कोई अंतर नहीं आया नारायण, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। उसी प्रकार अपनी नासमझी से हमने जिसे अपना मान लिया, उसके साथ मोह कर लिया, और जिसके साथ जिसे अपना माना, उसके बिगड़ने पर हमें दुख हुआ, शोक हुआ, अपने पन में ही शोक बना। इसलिए शोक किसके लिए? बोले उसके लिए, यदि ज्ञानी के लिए शोक शब्द किसी तरह बनता ही नहीं, जो बनता है वो बिगड़ने के लिए, जो बनाया जाता है वो बिगड़ जाता है, जो बनाया ही नहीं जाता है वो कभी बिगड़ता ही नहीं है, और जो बनता है वो बिगड़ने के लिए ही बनता है। इसलिए ज्ञानी उस बात पर कभी कोई शोक नहीं करता। उपनिषद का सातवां मंत्र हमें ईशावास्य यही समझाती है, जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए यह सब भूत रूप आत्मा ही हो गए हैं, सब आत्मा है, तब वो एकत्व देखने वाला, सब में एक को देखने वाला जो ज्ञानी है, विद्वान है, उसके लिए क्या शोक है और क्या मोह है? न तो शोक है न मोह है। इसी बात को सातवें मंत्र में और स्पष्ट करते हुए कहा, सपरिया गा सुकर्मा, यह जो आत्मा सर्वगत है, सपरिया जो, यह जो आत्मा सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है, अक्षत है, ये आत्मा के लक्षण बताए। जो आत्मा सर्वगत है वो यहां है, यहां नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सर्वगत है माने सब जगह, सब समय, सर्व काल में व्याप्त है। ऐसे जो आत्म जैसे जो सब जगह है, सर्वत्र है, सब में है, जिसके अंदर देश काल वस्तु का कोई भेद नहीं है, वो अभेद रूप से सर्वव्यापक है, उसी को तो हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो यह जो लक्षण है, बोले किसका है, तो ये जिस लक्षण से हम परमात्मा को जान रहे हैं, उसी लक्षण से जानने में कौन आ रहा है, बोले ये आत्मा आ रही है। तब परमात्मा और आत्मा दो हो जाएंगे, दो रह करेंगे, यह आत्मा है, ये परमात्मा है, ऐसा भेद रहेगा, बोले नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का जो भेद है, ये तो केवल ऐसा भेद है। नारायण, मैं कई बार कहती हूं कि पहले हमारे देश में ये वनस्पति डालडा घी का कोई उत्पादन नहीं होता था, था ही नहीं है, तो लोग जानते ही नहीं थे। तो केवल हमारे यहां एक था घी, घी माने घी, परंतु धीरे धीरे लोगों ने वनस्पति डालडा घी का निर्माण आरंभ हुआ। जब वनस्पति घी बनाया जाने लगा तो उस वनस्पति घी को भी देखकर घी लोग समझने लगे। तो घी में और वनस्पति घी में फर्क समझने के लिए घी के डब्बों में लिखना शुरू कर दिया, शुद्ध देसी घी, इस फर्क को समझने के लिए कि ये वनस्पति घी है और ये शुद्ध देसी घी है, शुद्ध घी और ये वनस्पति घी। ये शब्द कब प्रयोग हुआ, बोले जब वनस्पति घी में भ्रांति होने लगी कि वनस्पति को हम घी समझने लगे, तो तब इसको दूर करने के लिए। उसी भांति जब हम शरीर को आत्मा समझने लगे, शरीर में आत्मवत बुद्धि होने लगी, शरीर में आत्मभाव रखते हुए हमने शरीर के सुख को सुख समझा, शरीर के दुख को दुख समझा, और इस शरीर से हमें बड़ी नासमझियां होने लगी। नासमझी अपने आप में क्या होने लगा कि बोले नासमझी ये होने लगी, अविचार पूर्वक शरीर के आत्मा के विचार को विचार न करते हुए केवल शरीर के विचार को हमने इतनी प्रधानता दे दी कि हम केवल शरीर के स्तर पर ही अपने आप को जानने लगे, अपने आप को मानने लगे, अपने आप को समझने लगे कि मैं क्या हूं। बोले मैं अमुक, मेरा नाम है अमुक, मेरा शरीर है, ये स्त्री शरीर है, ये पुरुष शरीर है, और ये मेरा जाति है, ये मेरा वर्ण है, ये मेरा आश्रम है, और इस प्रकार की ये सब जो जाति वर्ण लिंग की व्यवस्था थी, बोले ये व्यवस्था किसके लिए थी कि ये व्यवस्था इस शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए, केवल शरीर को किसी व्यवस्था के अंदर हम स्थिर रखेंगे तो शरीर से कोई अमर्यादाएं नहीं होंगी, शरीर की उत्संखलताओं को समन करने के लिए, इंद्रियों की उत्संखलता को समन करने के लिए, मन की उत्संखलता को समन करने के लिए हमें वर्ण आश्रम धर्म जाति कर्म आदि के साथ बांध करके जो रखा गया एक सामाजिक रूप से जो ये बंधनों में उसे ये परिचय देकर अस शरीर की अन्य शरीरों से भिन्नता देने के लिए इस शरीर को एक नाम दे दिया गया और इस शरीर को एक व्यवस्था दी गई, तो ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए रखी गई थी? बोले शरीर के लिए रखी गई थी। जो शरीर एक व्यवस्था के अनुसार रखा गया था ताकि इसकी सुरक्षा हो, इसकी रक्षा हो, इसका पालन हो, ये शरीर ठीक से रहे, ताकि इस शरीर से हम उस आत्म तत्व को, उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सके, समझ सके, उसके लिए इसे एक साधन मिले थे। परंतु हमने क्या किया, उन साधनों को ही मैं मान करके, अपने आप को मानकर बस हमारी सोच वहीं तक रह गई, शरीर तक ही रह गई। इसलिए उस शरीर के ही मामय अनुपाल है। ये बात तो ये थी, सर्वधर्मम परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामय अनुपालय। केवल शरीर की अनुपालना के लिए, इस शरीर के रखाव के लिए हमने सब बातों को छोड़ दिया। केवल शरीर को ही, इसी को बढ़िया खिलाओ पिलाओ, इसका ऐसो आराम सुख साधन, केवल इसी पर हमारा ध्यान केंद्रित हो गया। तब हमें इस शरीर से अपने को अलग करने के लिए एक फर्क दिया गया, बोले आत्मा और परमात्मा। परमात्मा शब्द का प्रयोग हुआ। परमात्मा शब्द देख कहकर हमको इस शरीर से अलग करने के लिए, परमात्मा की ओर जाओ, भगवान की ओर जाओ, ईश्वर की ओर जाओ, भगवत चिंतन में जाओ, इस प्रकार हमें इस शरीर से अपने ध्यान को हटाने के लिए इन शब्दों को दिया गया। तो इसका अर्थ संतों ने, शास्त्रों ने हमें एक दिशा दी कि हम इस रूप से अपने आप को शरीर से निकालकर परमात्मा की ओर। तो जो परमात्मा की लक्ष्य किया जा रहा, तत्त्वम, जो वह है वो तुम हो, जो तुम हो वो वह है, इस प्रकार वह कहकर, तुम कहकर जिसे बताया समझाया जा रहा वो तुम ही हो, वो तुमसे अलग तत् कहकर जो कहा जा रहा है वो तुम ही हो, वो तुमसे अलग नहीं है। इसलिए जिसने उस तुम को जान लिया है उसने सब को जान लिया। अस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, सबको जान लिया। सबको क्या जाना, बोले सर्वभूत रूप आत्मा हो गया उसके लिए, सब के अंदर सब में उसने उस परमात्म तत्व को देख लिया। और ऐसी निष्ठा को पाने के बाद उसके अंदर ना कोई शोक रह गया है ना कोई मोह रह गया है, और शोक मोह से तरकर वो विशुद्ध केवल 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 वह एक आत्म स्वरूप माने दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, जो स्वयंभू है, वो किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रही है। जो स्वयंभू है, स्वयं में अपने आप में, जैसे मणिमय प्रकाश हम कह देते हैं, मणि किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश में है, उसी प्रकार वो आत्मा स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है। ऐसे प्रकाश स्वरूप आत्मा को हम नमन करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन को मैं विराम देती हूँ। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मधुबाबू कहते भजन सुनाओ, भजन तो जो दो बोलो, सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो पुराण क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, घट घट में ब्रह्म ज्योत अपरकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का परकाश हो रहा, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।